नमस्कार भारत, आज है 5 नवंबर दिन शनिवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी और ट्रंप के बीच जुबानी जंग हुई और तेज प्रचार के आखिरी चरण में पार्टी समर्थक मतदाताओं को गोलबंद करने पर लगाया जा रहा है जोर।
Imagine it's Donald Trump standing in front of the Capitol.
पेरिस जलवायु संधि 4 नवंबर से हुई लागू, अब वैश्विक तापमान 2 फीसदी तक घटाने की है चुनौती। मुलायम कुनबे में घमासान के बीच समाजवादी पार्टी आज मना रही है 25वां स्थापना दिवस। सुनिएगा इस हफ्ते रिलीज हुई एनिमेशन फिल्म महायोद्धा राम की समीक्षा।
ये जो फिल्म है ये रावण के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, इसलिए शुरू में ही रावण को दिखाते हैं कि वो मेडिटेट कर रहा है, उसके 10 सर हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी दौर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन बढ़ा है, जिसके बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपनी रणनीति बदली है। पहले जहां हिलेरी स्विंग राज्यों में अधिक प्रचार कर रही थी, अब उन्होंने उन स्थानों पर प्रचार करना शुरू कर दिया है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो हिलेरी को ही वोट देंगे। चुनाव प्रचार में हिलेरी और ट्रंप के बीच कटुता में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। दोनों उम्मीदवारों ने अपने प्रचार अभियानों में एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की बढ़ती संभावनाओं के बीच प्रमुख शेयर इंडेक्सों में से एक में लगातार 9वें दिन गिरावट देखी गई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में हो रही गिरावट हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते की तुलना में इंडेक्स 3% नीचे आया है। 30 सालों में पहली बार इंडेक्स में इतनी गिरावट हुई है। बीबीसी बिजनेस संवाददाता के अनुसार बाजार इस बात को लेकर भ्रम में है कि अगर ट्रंप अगले हफ्ते चुनाव जीतते हैं तो उनकी नीतियाँ कैसी होंगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक के शहर मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी छोटे छोटे बच्चों को अपने कब्जे में कर रहे हैं। यूएन के अनुसार इन बच्चों का इस्तेमाल सैनिकों के रूप में किया जा सकता है ताकि लगातार आगे बढ़ती हुई इराकी सेना को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रवीना समदासानी ने जिनेवा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी देते हुए कहा, इस्लामिक स्टेट हमान अल अलिल शहर के निवासियों से कह रहा है कि वो 9 से 10 साल के बच्चों को उनके हवाले कर दे। वो अपने वाहनों में लगे माइकों का उपयोग करके ये घोषणा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जिन परिवारों ने ऐसा नहीं किया उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रवीना समदासानी के शब्द। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत जारी है ताकि देश के मौजूदा राजनीतिक संकट का हल निकाला जा सके। पिछले महीने वेनेजुएला की राजधानी कराकास से लौटे अमेरिकी उच्च अधिकारी टॉन शेनन के अनुसार अगर वेटिकन की मदद से हो रही वार्ताएं असफल रहीं तो दोनों पक्ष अपने समर्थकों को एकजुट करने लगेंगे और ये देश के लिए घातक होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और विपक्ष के बीच पिछले साल चुनाव के बाद से ही संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है। वेटिकन ने उस कैथोलिक रेडियो स्टेशन की कड़ी निंदा की है जिसने अपने प्रसारण में कहा था कि पिछले 3 महीने में इटली में आया भूकंप भगवान की तरफ से दी गई सजाएं हैं। वेटिकन के विदेश उपमंत्री आर्चबिशप एंजिलो बेकियू ने कहा कि कैथोलिक रेडियो मारिया की टिप्पणियां निंदनीय है। हालांकि रेडियो पर यह टिप्पणी करने वाले पादरी जियोवानी कावालकोली का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। पादरी के अनुसार पिछले दिनों इटली में समलैंगिक शादियां एक बड़ा पाप है। रेडियो मारिया ने पादरी के बयान से खुद को अलग कर लिया है। कनाडा के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि देश की सेना आर्कटिक सागर से उठ रही एक अजीबोगरीब आवाज़ की पड़ताल में लगी हुई है। ये आवाज़ पिछले कई महीनों से ग्रीनलैंड के फ्यूरी और हेकला प्रायद्वीप से आ रही है जो कनाडा का उत्तरी इलाका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अजीब सी आवाज़ के कारण जीव जंतु भाग रहे हैं जिनमें व्हेल और कई अन्य समुद्री जीव भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवार वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। सर्वेक्षणों के मुताबिक फिलहाल डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप पर थोड़ी बढ़त है, लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में ट्रंप का बढ़ता समर्थन देख हिलेरी क्लिंटन प्रचार की अपनी रणनीति बदलकर समर्थन मांग रही हैं। इसके साथ ही दोनों ही उम्मीदवार अब अनिर्णय की स्थिति में झूल रहे मतदाताओं की बजाय अपने समर्थकों से निवेदन करते नजर आ रहे हैं कि वो वोट जरूर डालें। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले हफ्ते जब FBI ने हिलेरी क्लिंटन की ईमेल की जांच फिर से शुरू करने की बात कही तो उसका ऐसा असर हुआ कि क्लिंटन की हिमायत में कमी आ गई। चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को 1 अंक से बढ़त मिली थी, लेकिन अब हिलेरी क्लिंटन को 3 अंक की बढ़त हासिल है। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार हिलेरी क्लिंटन को 47% वोटरों की हिमायत है तो डोनाल्ड ट्रंप को 44% वोटरों की हिमायत हासिल है। अब दोनों उम्मीदवार चुनाव में अहम समझे जाने वाले प्रांतों में एक के बाद एक चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इनमें पेंसिल्वेनिया, ओहायो, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन जैसे प्रांत शामिल हैं। दोनों उम्मीदवारों की कोशिश यही है कि जिन वोटरों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है कि किसको वोट देंगे, उनको अपने खैमे में कर लें। इसके लिए दोनों उम्मीदवार अपनी चुनावी रैलियों में एक दूसरे की खामियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। हिलरी क्लिंटन ने पिट्सबर्ग की रैली में बोलते हुए ट्रंप के बारे में वोटरों को चेताया।
Imagine it's Donald Trump standing in front of the Capitol. And we already know a lot about him.
हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि जरा सोचिए कि अगर ट्रंप वाशिंगटन में कैपिटल की इमारत के सामने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे, और हम जानते हैं ट्रंप कैसे इंसान है। वो औरतों का अपमान करते हैं, माजूर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, अप्रवासियों मुसलमानों के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। वो सबको साथ लेने के बजाय लोगों में दूरी बढ़ाते हैं। और जरा सोचिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में परमाणु हथियार के कोड देंगे जो छोटी सी बात पर भी भड़क जाते हैं। ये थे हिलरी क्लिंटन के शब्द। वहीं ट्रंप भी हिलरी क्लिंटन की खामियों को गिनाते नहीं थकते हैं। न्यू हैम्पशायर में एक रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
As you know, the FBI now has multiple open criminal investigations into Hillary Clinton.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में FBI जांच कर रही है, और इनमें वो 650,000 ईमेल का मामला भी है, और उनके विदेश मंत्री होने के दौर के भी मामलों की जांच जारी है। हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने झूठ बोला कि उन्होंने सारी ईमेल्स विदेश मंत्रालय को दे दी थी, और अब हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे जिसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप खेमे की ये कोशिश है कि वो वोटरों को ये याद दिलाते रहें कि हिलरी क्लिंटन पर तो आपराधिक मामले में जाँच चल रही है, और ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति नहीं चुना जाना चाहिए। उधर हिलरी क्लिंटन खेमे में ये गुस्सा है कि FBI ने चुनाव के इतने करीब ईमेल की जांच शुरू करके चुनाव पर असर डालने की कोशिश की है। कुछ खबरों में FBI के सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन के निजी ईमेल सर्वर को विदेशी हैकरों ने हैक भी किया था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अर्थव्यवस्था भी अहम चुनावी मुद्दा है। शुक्रवार को अक्टूबर महीने की जॉब रिपोर्ट्स या रोजगार के बारे में सरकारी आंकड़े आए हैं, जिसमें 4.9% की दर पर बेरोजगारी दिखाई गई है, जिसमें 1,61,000 नई नौकरियां भी दिखाई गई हैं, जिसे उम्मीद से कम तो कहा जा रहा है, लेकिन बुरा भी नहीं समझा जा रहा। इसके अलावा तनख्वाहों में 2.8% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इसे भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ओबामा प्रशासन की जॉब्स रिपोर्ट तो बेहद ख़राब है, और उन बेरोजगारों को उसमें शामिल ही नहीं किया गया है जिन्होंने अब नौकरियां ढूंढना ही छोड़ दिया है। हिलरी क्लिंटन वोटरों को ये याद दिलाती रहती हैं कि ओबामा प्रशासन की नीतियों के कारण 2008 से अब तक अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है, और अब उनकी आर्थिक नीतियों से और अधिक सुधार होगा। हिलरी क्लिंटन के लिए चुनावी सभाओं में राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति जो बाइडन भी पूरे जोर शोर से लगे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर वाले इस अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
पेरिस जलवायु समझौता 4 नवंबर से लागू हो गया। कई सालों की जटिल वार्ता के बाद पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षरित यह समझौता जलवायु परिवर्तन पर पहली वैश्विक संधि है। इसका मुख्य लक्ष्य औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 2 डिग्री तक कम करना है। भारत और बाकी दुनिया के संदर्भ में इस समझौते को लागू करने का क्या मतलब है, यह जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने BBC के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का से बात की।
देखिए, गत साल के दिसंबर महीना में तकरीबन 200 देश ने एक समझौता किए थे, उसे पेरिस समझौता कहते हैं। उसका एक सबसे बड़ा मुख्य मकसद ये था कि विश्व का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, अब उस वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। मुख्य उद्देश्य यही है। इस मकसद के लिए सबसे बड़ा काम ये है कि जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं सारे देश, जैसे कि अपने बिजली निकालने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरिए जो कार्बन उत्सर्जन करते हैं जीवांश ईंधन की जरिए, कोयला तेल जलाकर, इसको बहुत ही भारी हिसाब से कटौती करना है। तो ये सारे देश इसको कटौती करेंगे, और वैज्ञानिकों को मानना है कि अब जब ये कटौती करेंगे तभी जो तापक्रम वृद्धि में नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये जो है, ये काम जो कार्बन उत्सर्जन कटौती करना है, ये काम अब नवंबर 4 की तारीख से ये काम शुरू करना है।
ये कैसे पता चलेगा कि इस समझौते को मानने वाले देश जो हैं वो कार्बन उत्सर्जन में कटौती वाकई कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा?
आपने सही कहा, जो सहमति किया गया था वो तो काफी आसानी से किया गया, लेकिन ये पेचीदा जो प्रश्न है कि कौन क्या कर रहा है, फिर इसका हिसाब किताब कौन करेगा, तो इसलिए जो है वो रूल बुक जो नियम की जो पुस्तिका है, किताब बनाना है एक, यही काम अब सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए जो अगले हफ्ते से मोरक्को में यूएन की क्लाइमेट मीटिंग शुरू हो रहा है, उसका यही मकसद होगा कि जो वो जो नियम है वो बनाना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकारी है वो इनका कहना है कि सन 2018 तक ये काम पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है, खास करके विकासशील देश भारत और चीन की तरह उनका हमेशा यही तर्क रहा है कि विकास करने अब उनकी बारी है और भारी कटौती कार्बन उत्सर्जन करने की जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों का है।
भारत ने भी पेरिस जलवायु समझौते को माना है, दस्तखत किए हैं इस पर। अब जबकि ये लागू हो गया है, भारत पर इस समझौते के लागू होने का क्या असर पड़ेगा?
भारत का ये तर्क है कि हम जो कर पाएंगे हम करेंगे, लेकिन ये मुख्य जिम्मेवारी विकसित देशों का है, क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया है। उस लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे और उसके लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इस तरह का जो स्रोत है उसकी विकास करना है। तो देखना ये है कि वो जो संतुलन जो है कि एक और आपको कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो फैक्ट्रीज हैं या फिर बिजली निकालने वाला जो प्लांट्स हैं इनको बंद करना है, और दूसरी ओर जो है नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका प्रयोग बढ़ाना है। यही है चुनौती कि वो संतुलन किस तरह से कर पाएंगे।
ये थे बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 2 दिवसीय नेपाल दौरा संपन्न हो गया है। प्रणब मुखर्जी ने नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में जनकपुर कस्बे में मशहूर जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और पोखरा में भारतीय सेना के पेंशनरों को संबोधित भी किया। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बीबीसी नेपाली सेवा के सुरेंद्र पुयाल से बात की और उनसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रपति के नेपाल दौरे का महत्व क्या रहा।
ये बहुत महत्वपूर्ण भ्रमण था भारत के राष्ट्रपति के नेपाल का। उत्तरी सबसे नजदीकी पड़ोसी कहा जाता है, मगर 18 साल बाद एक भारतीय राष्ट्रपति का नेपाल में भ्रमण हुआ। 18 साल पहले के आर नारायणन आए थे, उससे पहले कई साल पहले ज्ञानी जैल सिंह आए थे, और ये प्रणब मुखर्जी आए हैं। प्रणब मुखर्जी ने नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से लेकर प्रधानमंत्री प्रचंड से लेकर विभिन्न राजनीतिक दल के नेता से लेकर जनकपुर धाम मिथिला में तराईवासी नेपाली से लेकर हिंदू धर्मावलंबी से लेकर भारतीय सेना में जो नेपाल के गोरखा जो काम करते हैं वो पेंशनर तक बात की है। इस हिसाब से संबंध में काफी सुधार आ गया है। अगर एक साल पहले की अवस्था से तुलना किया जाए तो एक साल पहले जब नेपाल और भारत की सीमा में तनाव हो रहा था मधेशी राजनीतिक दल की तनाव की अवरोध की वजह से, तो उस वक्त काफी ठंडा हो गया था नेपाल और भारत के संबंध, क्योंकि कुछ महीने तक नाकाबंदी जैसा एक माहौल बना और बहुत मुसीबतें आई, दैनिक जीवन यापन में कष्ट आया था, मगर एक हिसाब से संबंध में काफी सुधार आ गया है।
ये बताइए कि नेपाल का मीडिया, नेपाल के समाचार पत्र, टेलीविजन न्यूज चैनल वगैरह जो हैं, वो उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यात्रा को किस तरह जगह दी है, कैसे छाप रहा है नेपाल का मीडिया उनकी इस यात्रा को?
देखिए, नेपाल एक छोटा सा हिमालयन मुल्क है। जब प्रणब मुखर्जी नेपाल आए और 3 दिन तक वो यहां व्यस्त रहे, इस पूरे अवधि भर प्रणब मुखर्जी थे नेपाल के समाचार में, टेलीविजन से लेकर प्रेस में, ऑनलाइन में और सोशल मीडिया में भी। कुछ हिसाब से थोड़ा सा विरोध भी हुआ था, क्योंकि भ्रमण की वजह से कुछ परेशानी भी हुई थी ट्रैफिक व्यवस्थापन में काठमांडू में।
ये बताइए कि जो भारत की सेना में नेपाली गोरखा हैं, जो पेंशनर हैं अब भारत के, भारतीय सेना के, उनसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुलाकात की, तो ये मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई, और ये जो पेंशनर्स हैं खुद उनका क्या कहना है, क्या उन्हें कुछ शिकायतें हैं भारत से?
जी, मुखर्जी ने पेंशनर को संबोधन करते हुए पोखरा में कहा है कि जितने भी नेपाली गोरखा है जो भारतीय सेना में काम करते हैं, वो नेपाल और भारत का नजदीकी संबंध का कुछ आधारशिला है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेंशनर खुश भी नजर आ रहे थे, मगर कुछ दिन पहले भारतीय गोरखा के पेंशनर जो है नेपाल में, वो उनका एक समूह कुछ असंतुष्ट नजर आ रहा था। उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन किया था और उन्होंने बताया था कि पेंशनर्स के विधवा जो होते हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और कई हजार पेंशनर्स हैं भारतीय गोरखास के, वो पेंशन सुविधा से वंचित है उनका परिवार, उनका मांग जो है, उनका असंतुष्टि जो है, उनका समस्या जो है वो समाधान करने के लिए भारत सरकार की और भारत के राष्ट्रपति का नेपाली गोरखा पेंशनर्स ने अपना ध्यानाकर्षण करना चाहा था।
ये थे बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फुयाल।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
पिछले करीब दो महीने से पारिवारिक विवाद में उलझी समाजवादी पार्टी आज अपना 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। पार्टी ने इस कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां की हैं और समाजवादी विचारों से जुड़े तमाम नेताओं को बुलाया है, लेकिन पार्टी में चल रहे विवाद की छाया इस कार्यक्रम पर पड़ती दिख रही है। पार्टी ने एक ओर जहाँ पिछले दिनों निष्कासित नेताओं को आने से मना किया है, वहीं माना यह भी जा रहा है कि ये नेता अनुशासन का पालन करते हुए खुद भले ही ना आए लेकिन इनके समर्थक जरूर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में खेमेबाजी का असर भी दिख सकता है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में 3 नवंबर को अखिलेश की रथयात्रा कार्यक्रम के दौरान परिवार की एकता दिखाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन आज होने वाले कार्यक्रम में उस एकता का दिखावा भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 3 तारीख को ही साफ कर दिया था कि वो इस कार्यक्रम में पार्टी से निकाले गए लोगों को नहीं देखना चाहते, और कल इस बारे में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की और बताया जा रहा है कि इस बारे में बाकायदा सूचना जारी की गई है, लेकिन पार्टी के नेता इस बारे में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
नहीं, मुझे कोई जानकारी इस तरह की अभी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ पर कार्यक्रम है मैं वहाँ मौजूद था, मुझे इस तरह की कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात जरूर कही है कि जो बर्खास्त लोग हैं अगर वो अपने बर्खास्तगी की एप्लीकेशन वापस होने की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे तो उसको विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, क्योंकि निकाला नहीं।
कल दिन भर मीडिया में इसे लेकर चर्चाएं गर्म रहीं और इस बात की भी चर्चा रही कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि निष्कासित सभी नेता उनके खेमे के हैं। हालांकि निष्कासित किए गए कुछ नेता खुद ही कार्यक्रम में न आने का मन बना चुके हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव को कथित विवादित पत्र लिखने वाले MLC उदय वीर सिंह कहते हैं,
लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने की कोई शर्त मेंबरशिप वाली तो है नहीं, सपोर्टर भी आ सकते हैं, आम लोग भी आ सकते हैं, आम सभा टाइप सब, लेकिन हम लोग मतलब क्योंकि इस तरह का प्रेस के माध्यम से मैसेज भी आ गया कि शायद लीडरशिप ने मना किया है, मना नहीं भी किया हो तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की बात हो जिससे कोई इधर उधर सवाल हो, इसलिए हम लोग शायद नहीं होंगे। हमको तो पार्टी में थे, पार्टी में रहना है, पार्टी से ही अनुशासन से हम तो अभी भी भले ही मानते हैं, समर्थक जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, मेरे क्या समर्थक है, वो तो सब जो हमारे जितने भी लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी के समर्थक हैं, नेताजी के समर्थक।
उदयवीर की माने तो वो खुद भले ही न जाएं लेकिन उनके समर्थक जरूर जाएंगे और तमाम आशंकाएं इसी बात को लेकर चल रही हैं कि कहीं दोनों धड़ों के समर्थक आमने सामने न हो। बहरहाल पार्टी ने पुराने जनता दल से निकले कई नेताओं को भी इस कार्यक्रम में बुलाया है, मसलन शरद यादव, नीतीश कुमार, HD देवेगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला इत्यादि। इनमें से कौन आता है और कौन नहीं ये तो कार्यक्रम के बाद पता चलेगा, लेकिन इस बुलावे का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की संभावनाएं तलाशना भी है। पर क्या ये गठबंधन बन पाएगा, बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र।
दो बड़ी समस्याएं बिहार की तरह और केरल की तरह यहाँ इसलिए नहीं होता कि इस महागठबंधन में बीएसपी जब तक शामिल नहीं होती तो उसका बहुत मतलब नहीं रहता है। दूसरी बात ये है कि जो लोग साथ आने का मन भी है वो लोग थोड़ा उनको लगता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ बीजेपी की लड़ाई में विश्वसनीयता का संकट है, लोग मुलायम सिंह यादव पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहते, और चाहे कांग्रेस के नेता हो, जनता दल यू के हो, उनका भी मानना है कि अगर वो बातचीत करेंगे तो हम अखिलेश यादव से करेंगे, क्योंकि अभी जो मैसेज है पार्टी के अंदर कि पार्टी का चेहरा और पार्टी का भविष्य का नेतृत्व जो है अखिलेश यादव।
सुभाष मिश्र गठबंधन पर आशंका जाहिर कर रहे हैं, वहीं कुछ अन्य पर्यवेक्षकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल चुनौती अन्य पार्टियों से गठबंधन की नहीं बल्कि पार्टी की एकता को बनाए रखने की है। अब देखना यह है कि पार्टी के आज के कार्यक्रम में ऐसी तमाम आशंकाओं के बादल छटेंगे या फिर संशय ही बना रहेगा। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का, लेकिन और दिनों की तरह आज हम अखबारों की समीक्षा स्टूडियो से नहीं बल्कि भोपाल से करेंगे। भोपाल में हमारे सहयोगी विनीत खरे तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी विनीत, क्या कहते हैं आज के अखबार जो भोपाल में छपे हैं?
अमरेश, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स का जिक्र करूंगा। बड़ी सी तस्वीर है, कल मुसलमानों की एक इकट्ठा हुए थे और रैली की परमिशन की मांग की थी लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर तर्जुमे वाली मस्जिद है, वहां पर कई नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने जस्टिस की बात कही है। जो 8 कथित सिमी के लोग मारे गए उनके लिए मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश अब्दुल रजाक, जो कि जमात उलेमा हिंद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जो मारे गए लोग थे उन्हें मार्टर्स यानी शहीद बताया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो हल्के फुल्के थे, बहुत फ्लिमसी थे, और कहा कि जो उनकी फाइट है जस्टिस को लेकर वो न्यायिक तौर पर जारी रहेगी। बड़ी सी तस्वीर भी है कल जो लोग इकट्ठा हुए थे उनकी। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है कि जो हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव मारे गए थे ड्यूटी पर, उनकी ड्यूटी नहीं लगनी थी, आखिरी मोमेंट पर उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया। तो अखबार की एक लाइन है कि इनसाइडर हैंड की ओर इशारा किया है कि अंदर की तरफ से क्या ऐसा हाथ हो सकता था किसी आदमी का, उस और उसको लेकर अखबार ने उनकी जो बेटी थी उनसे भी बात की है और उनकी बेटी का कहना था कि हाँ आखिरी मोमेंट पर रमाशंकर यादव यानी उनके पिता की ड्यूटी चेंज की गई थी, तो उसको लेकर सवाल खड़े हैं। इसके अलावा एक खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में कि स्थानीय मुसलमान उनके सोच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक जो मॉडरेट फेस देखा जाता था उसमें बदलाव आया है और जो उनका उनकी सोच है स्थानीय मुसलमानों की कुछ की एक तबके की कि उनका कहना है कि जो आरएसएस मध्य प्रदेश को एक लैबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहती है वो आरएसएस का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का विकास पर ध्यान है। एक और खबर है दैनिक भास्कर में कि भाजपा हाईकमान की सलाह एनआईए से न कराए जांच, इसमें अमित शाह जो बीजेपी के प्रमुख हैं उनके उनके हवाले से खबर है कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से बात की है कि एनआईए से जांच न करवाए और क्योंकि न्यायिक जांच और मजिस्ट्रियल जांच ऑलरेडी चल रही है तो उससे लोग उससे जो विपक्ष है उस पर टारगेट करने में ज्यादा आसानी होगी।
जी विनीत खरे, भोपाल से अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। इस हफ्ते रिलीज हुई है एनिमेशन फिल्म महायोद्धा राम, जिसमें अभिनेता जिम्मी शेरगिल, गुलशन ग्रोवर और कुणाल कपूर ने अपनी आवाजें दी हैं। सुनिए इस फिल्म के बारे में फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी की राय, जिनसे बात की बीबीसी के विदित मेहरा ने।
तेरे हजार वर्ष पूरे हुए राक्षस, बोल तुझे क्या चाहिए?
ब्रह्मा, मुझे सब चाहिए।
रामलीला तो खत्म हो गई पर फिल्म महायोद्धा राम आज रिलीज हुई है और उसे देखकर सीधा स्टूडियो में आ गए हैं अर्णव बैनर्जी। अर्णव, कैसी रही महायोद्धा राम?
विदित, मुझे बहुत उम्मीद थी ऐसी फिल्म की जहाँ पे रावण की जो क्वालिटीज हैं उनको दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से ही रावण से थोड़ा फैसिनेटेड था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रावण बहुत बड़े मतलब बेटर थे राम से, वो कहना पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा लेकिन रावण एक एरुडाइट थे, बहुत बड़े योद्धा थे और इतनी सारी उनमें गुण थे जो शायद राम में नहीं थे। तो हम बचपन में कभी कभी सोचते थे कि जो इतना बड़ा था उसमें इतनी खामी क्यों हुई। तो ये जो फिल्म है ये रावण के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। इसमें शुरू में ही रावण को दिखाते हैं कि वो मेडिटेट कर रहा है, उसके 10 सर हैं और आपको मालूम है सारे 10 सर जो हैं वो सारे बॉलीवुड एक्टर्स गौरव गेरा और सदाशिव अमरापुरकर और गुलशन ग्रोवर जो मेन रावण की आवाज है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे आजकल बहुत सारी एनिमेशन देखते हैं, टीवी पे घर पे ही आती रहती हैं। एनिमेशन जहाँ तक है वो तो सही है लेकिन बच्चों को हम गुमराह नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कि हमने कभी पढ़ी नहीं, जैसे सीता का योद्धा होना, सीता का मारपीट करना और सीता के स्वयंवर में रावण का होना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि रावण के और महाभारत के बहुत सारे वर्जन हैं साउथ में, कहीं एक दिखाया होगा ऐसा, लेकिन जो प्रचलित है जो आमतौर पर हमने देखा है सीता को एक जिस तरह की नारी दिखाया गया है, एक जिसमें एक फेमिनिन चार्म है, उस तरह से योद्धा जो है वो राम है। यहाँ पे रावण और राम और लक्ष्मण और सीता सारे कैरेक्टर्स जो हैं बिल्कुल अलग किस्म के हैं जो हमने अभी तक उनके बारे में पढ़ा नहीं है। जैसा उस लिहाज से महायोद्धा फिल्म जो है वो फैसिनेट तो करेगी पर मुझे लगता है कि हिस्ट्री के साथ या जो एपिक हमने इतने सालों से संभाली हुई है उसके साथ छेड़छाड़ करना अनुचित है।
सूत्रों के अनुसार राम विष्णु अवतार
नहीं बचे।
बचेगा ये अवतार?
विष्णु अवतार है वो पगले,
विष्णु अवतार कौन है?
सबके सब गधे भरे हैं यहाँ पे,
तुझे तुम्हें।
और जो वो 10 सर आपस में बात करते रहते हैं
वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वरुण ग्रोवर है इसमें और जावेद अख्तर के लिरिक्स हैं, लेकिन वो कहीं कहीं ह्यूमर जो है वो छुप जाता है। मुझे लगता है पूरी फिल्म एपिक बनाते बनाते उनको लगा कि कहीं ह्यूमर डाल दिया जाए, लेकिन ह्यूमर कुछ हद तक तो सही है, उसके बाद बचकाना हो जाता है, यानी कुछ जोक्स जो है एकदम जस्ट फॉल फ्लैट। तो इस वजह से जो फिल्म जिस तरह की बननी चाहिए, मुझे हमेशा लगता है कि हम पूरे दुनिया को रामायण तो हमने दी है, हालांकि वो भी घर घर नहीं पहुंची है, महाभारत और एक लेजेंड ऑफ रामायण दी है हमने जो जापानीज प्रोडक्शन थी, हम ऐसी एक कहानी दे सकते हैं महाभारत और रामायण की जो पूरे युग में पहुंचे, चाहे वो फीचर फिल्म हो चाहे एनिमेशन हो, तो वो यहाँ पे मुझे लगता है कि कामयाब नहीं हुआ।
ओके, तो आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को?
देखिए एनिमेशन अच्छा है, कुछ कुछ चीजें अच्छी, लेकिन सब मिला के तो टोटल जो एक एक्सपीरियंस है वो इतना लुभावना नहीं था, इसलिए मैं इसको कहूंगा 5 में से 2 दूंगा।
अगले हफ्ते अर्नब, अगर हम अगले हफ्ते की बात करें, रॉक ऑन 2 आ रही है, सांसे आ रही है, 30 मिनट्स आ रही है, इस हफ्ते तो मतलब ये बहुत ही ठंडा वीक मैं कहूंगा, ये बहुत ठंडा वीक रहा। अगले हफ्ते आपको क्या चीज और लुभा रही है?
देखिए जब भीड़ हो जाती है तो बड़ा एक डर भी लगा रहता है, रॉक ऑन तो ऑब्वियसली मच अवेटेड फिल्म है, सेकंड में उसका पार्ट है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी फिल्म जिसके बारे में कम सुना हो वो बाजी मार ले।
ओके,
तो देखते हैं क्या होता है।
चलिए तो वेट करते हैं अब अगले हफ्ते, देखते हैं अर्नब कौन सी फिल्म को कितने स्टार्स देते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत सरकार ने टीवी चैनल एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। वजह बताई, चैनल ने पठानकोट हमले के कवरेज के दौरान सामरिक रूप से संवेदनशील सूचनाएं प्रसारित की। एनडीटीवी ने सरकार के इस आदेश को आपातकाल जैसा बताया, जब प्रेस की आजादी छीनी गई थी। क्या किसी समाचार चैनल या अखबार को एक दिन बंद करने का आदेश देना मीडिया की आजादी पर सीधा हमला है? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या हैं इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 5 नवंबर को शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811 7000 और 1811 7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और इंग्लैंड के बीच 9 तारीख से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई के सचिव अजय शिर्के ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशनल मैनेजर फिल नील को खत लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोर्ड पर लगाई गई पाबंदियों के कारण मेहमान टीम को पूर्व निर्धारित सुविधाएं नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी लिखा है कि बीसीसीआई फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी के बीच एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लागू करने की स्थिति में नहीं है। शिर्के ने ये भी लिखा कि इंग्लैंड टीम को होटल, यात्रा व अन्य सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन एमओयू लागू होने तक बीसीसीआई इसका भुगतान करने का वादा नहीं कर सकती, ईसीबी इन सुविधाओं का भुगतान करने का बंदोबस्त करे। लोढ़ा कमेटी के निर्देश मिलने के बाद बीसीसीआई इससे आगे की जानकारी देगा। उधर मेजबान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां खेल का दूसरा दिन बल्लेबाजों के लिए मुसीबत साबित हुआ। हालांकि पहले दिन भी 10 विकेट गिरे थे और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी केवल 242 रन पर सिमट गई थी, लेकिन इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 105 रन बना लिए थे, तब लगा कि दक्षिण अफ्रीका भारी मुश्किल में पड़ने वाली है। लेकिन कल दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को 244 रनों पर उखाड़ फेंका। हालांकि पहले विकेट के लिए डेविड वार्नर और शॉन मार्श ने 158 रनों की साझेदारी की। पहली पारी के आधार पर केवल 2 रन से पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में कल का खेल समाप्त होने के समय तक 2 विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के आखिरी दौर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन बढ़ा है, जिसके बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने अपनी रणनीति बदल दी है। अमेरिका में ट्रंप के जीतने की बढ़ती संभावना के बीच प्रमुख शेयर इंडेक्सों में से एक में लगातार 9वें दिन गिरावट देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक के शहर मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी छोटे छोटे बच्चों को अपने कब्जे में कर रहे हैं, और अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत जारी है ताकि देश के मौजूदा राजनीतिक संकट को खत्म किया जा सके। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार, भारत की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।